I'm Annie Apple, and I'm here to invite you to come and listen to my new podcast series, Raising a Pro. It's the most intimate sports-related conversations you will hear. Each week, we explore the journeys of some of your favorite NFL players through the eyes of those that know them best. From Joe Burrow, DeAndre Hopkins, Myles Garrett, Ezekiel Elliott, Nick and Joey Bosa, just to name a few. With exclusive insights and information, we leave no stone unturned. Subscribe now to Raising a Pro on your favorite podcast app.
HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original.
आइए मैं राणा सफी आपको ले चलती हूँ इतिहास की अनदेखी गलियों में मेरे पॉडकास्ट अनजाने रास्ते के जरिए। आइए आज आपको लेके चलते हैं बिहार के बोधगया और बोधगया में महाबोधि टेंपल। ये जो टेंपल कॉम्प्लेक्स है ये लॉर्ड बुद्धा की जिंदगी से जुड़े हुए चार जो बहुत ही पवित्र स्थान हैं उनमें से एक है। पहला टेंपल जो था यहाँ पर वो सम्राट अशोका ने बनाया था 3rd century BC में, और जो आज का टेंपल है जो हमको आज मंदिर जिस तरह से मिलता है वो 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनाया गया था गुप्ता साम्राज्य के दौरान, और उसके बाद उसको 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम की निगरानी में रिस्टोर और रेनोवेट किया गया। तो चलिए हम आज उसकी कहानी देखते हैं। सबसे पहले तो हम जाते हैं लुम्बिनी। लुम्बिनी जो नेपाल में एक राज्य था जहाँ के ऊपर एक शहजादा सिद्धार्थ रहा करता था, अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं था। वो जब देखता था लोगों को, किसी बीमार को, किसी भूखे को, तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जागती थी। और एक दिन वो अपना राजपाट, अपना घर बार सब छोड़ के सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा घर से। घूमते घामते सबसे पहले वो उस जमाने में जो आज हम जिसको बोधगया कहते हैं वो मगध राज्य का एक हिस्सा था। वो मगध राज्य के पहाड़ों में एक जगह है जिसको महाकाला केव्स कहते हैं या दुंगेश्वरी केव्स कहते हैं, वहाँ पहुँचा और वहाँ बैठ के उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तप किया। इतनी तपस्या की कि उनकी सारी हड्डियाँ निकल आईं। और वहाँ बैठे बैठे जब उन्होंने ये इतना पेनेंस किया, सेल्फ मॉडिफिकेशन किया, तो उनको ये समझ में आया कि एक्सट्रीम एसेटिसिज्म जो होता है वो प्रबोधन या एनलाइटनमेंट का रास्ता नहीं है, और एनलाइटनमेंट का रास्ता जो है वो मिडिल पाथ है, यानी के आत्मसर्ग और स्वभोग के बीच का रास्ता, यानी के सेल्फ डिनायल और सेल्फ इंडल्जेंस के बीच का रास्ता। वो वहाँ से महाकाला केव से उतरते हैं और जब नीचे आते हैं तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बहुत ही कमज़ोर हालत में, भूख से उनकी हालत ख़राब थी। वहाँ पे एक गांव की एक लड़की गुजर रही थी जिसका नाम था सुजाता, उसने उनको देखा और लाके उन्हें खीर खिलाई। आज महाकाला केव्स में एक लॉर्ड बुद्धा की प्रतिमा बनी हुई है जिसमें उनका वो एसेटिज्म वाला जो फेज है वो दिखाया गया है, और जहाँ पे सुजाता ने खीर खिलाई थी वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है जिसमें पूरा वो दृश्य को दिखाते हैं, पूरा टैबलो है वहाँ पर। वहाँ से खीर खाते ही उनकी जान में जान आई, और फिर वहाँ से वो उरेवेला गाँव की तरफ गए जिसको आज हम बोधगया कहते हैं। वहाँ पर उनको एक बहुत ही हरा भरा एक पीपल का दरख्त दिखाई दिया, और उनको लगा जैसे कि वो उन्हें बुला रहा है, और वो उस तरफ बढ़े। उस पेड़ के नीचे वो एक हफ्ते ध्यान में रहे, मेडिटेशन किया उन्होंने एक हफ्ते उसके नीचे। जब वो ध्यान कर रहे थे उस पेड़ के नीचे, तो जो राक्षस है मारा उसने उनको उनके ध्यान को भंग करने की बहुत कोशिश की, कभी खूबसूरत औरतें भेजी तो कभी अपनी फौज भेजी। लेकिन लॉर्ड बुद्धा जो थे, जो उस वक्त वहाँ ध्यान कर रहे थे, उनका ध्यान भटका नहीं। एक हफ्ते ध्यान करने के बाद उनको इनलाइटनमेंट मिला जिसको प्रबोधन कहते हैं हम लोग। और बहुत दिलचस्प एक बात ये है कि मारा जो है वो प्रबोधन का बिल्कुल उल्टा है। बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में मारा को डेथ, रीबर्थ और डिजायर से जोड़ा जाता है। बहरहाल ये पूरा दृश्य जो है वहाँ के ऊपर महाबोधि मंदिर के दीवारों के ऊपर बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। हमको सबसे पहला जो जिक्र मिलता है, रेफरेंस मिलता है इस बोधि ट्री का, ये भारूड बास रिलीफ में मिलता है। भारूड जो है एक स्तूपा था, सतना मध्य प्रदेश के जिले में मिला था ये, और ये बास रिलीफ जो है वो म्यूजियम में रखा हुआ है। ये 125-200 BCE की है और इसमें हमको देखने को मिलता है कि एक बहुत ही खुला हुआ एक पवेलियन है सुतूनदार, और उसमें बीच में ये पेड़ है और उसके नीचे एक आसन है जिसको हम लोग आज वज्र आसन या डायमंड थ्रोन कहते हैं। हमको इसका जिक्र जो है वो चाइनीज ट्रैवलर्स फाहेन और ह्यूनसांग के राइटिंग्स में भी मिलता है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि जो बोधि ट्री आज महाबोधि मंदिर में है वो ओरिजिनल पेड़ नहीं है। ओरिजिनल तो कई दफ़े कटा और ख़राब हुआ और उसके बाद उसी की सैपलिंग्स में से नया लगाया गया। आज जो हमको दिखाई देता है वो उसका 5th इनकारनेशन है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, लॉर्ड बुद्धा ने एक हफ्ता तो बोधि वृक्ष के नीचे गुजारा और उसके बाद उन्हें वहाँ एनलाइटनमेंट प्रबोधन मिला और फिर उसके बाद वो वहाँ पे 6 हफ्ते और रहे उसी जगह पर जहाँ पे मंदिर बना हुआ है। दूसरा हफ्ता उन्होंने एक ऐसी जगह खड़े होकर गुजारा जहाँ से उनको वो बोधि वृक्ष दिखाई देता था और बिना आँख छपके, बिना पलक छपके उन्होंने उस वृक्ष को देखा। उस जगह पे आज एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है अनिमेश लोचन, यानी कि जिसकी आँख बिल्कुल ही सीधी रही हो, जिसकी पलक न झपकी हो। तीसरा हफ्ता लॉर्ड बुद्धा ने फिर ध्यान में गुजारा और आगे पीछे वही चलते रहे और कहते हैं कि जब वो चल रहे थे तो वहाँ के ऊपर मज़े हुए और वहाँ पे फूल उगाए, 18 फूल उगे। उस जगह को जो परिक्रमा जहाँ पे उन्होंने की उसको रत्ना चक्रम कहते हैं, ज्वेल वॉक कहते हैं, और ये जो मंदिर है उसकी जो नॉर्दर्न दीवार है उसी के पास है और बहुत ही खूबसूरत है। चौथा हफ्ता लॉर्ड बुद्धा ने रत्नाघर चैत्य में गुजारा जो इस मंदिर के नॉर्थ ईस्ट पर है। पांचवा हफ्ता फिर लॉर्ड बुद्धा ने ध्यान में गुजारा अजपाल निग्रोध पेड़ के नीचे, और यहाँ के ऊपर उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया जो उनसे आके लोगों ने पूछा, खासतौर से ब्राह्मणों ने। और वहाँ पे आज इस वक्त सिर्फ एक साइन बोर्ड है जो बताता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लॉर्ड बुद्धा बैठे थे, उन्होंने जवाब दिए थे। छठा हफ्ता लॉर्ड बुद्धा ने मुचिलिंदा लेक में गुजारा और इस लेक का नाम जो है वो जो सर्पेंट किंग है मुचिलिंदा उनके नाम पे रखा गया है, क्योंकि जितनी देर लॉर्ड बुद्धा वहाँ बैठे रहे जो नाग राज था उसने उनकी हिफाजत की अपने फन से। लॉर्ड बुद्धा ध्यान करते रहे और ये नाग जो था ये उनको देखता रहा और उनकी रक्षा करता रहा। सातवां हफ्ता लॉर्ड बुद्धा ने जिस जगह के ऊपर गुजारा उस जगह पे आज एक पेड़ लगा दिया गया है और उसको राजयत्न वृक्ष कहते हैं। यहाँ पे वो बैठे रहे ध्यान में जब तक के दो ट्रैवलिंग मर्चेंट्स यानी के ताजर जिनका नाम था तपुस और भालिका वो आते हैं और वो उनको राइस केक्स और हनी खिलाते हैं। सबसे पहला जो महाबोधि मंदिर था वो सम्राट अशोका ने 250 BCE में बनाया और यही भारहुट बास रिलीफ में दिखाया जाता है। इसके बाद इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस हुए, एक्सपेंशंस हुए। जो भारूड बास रिलीफ है उसमें जो अशोका का मंदिर है वो दिखाते हैं कि एक ओपन पवेलियन है जिस जो सुतूनदार है और उसके बीचों बीच में वज्र आसन रखा हुआ है और इसके चारों तरफ डेकोरेशंस हैं। जो आज का मंदिर है वो गुप्ता पीरियड में बनाया गया था यानी कि 5वीं और 6वीं सदी में, और ये सबसे पुराने जो ईंट ब्रिक के बनाए हुए मंदिरों में से एक है और इसका काफी असर हुआ बाद के ब्रिक आर्किटेक्चर में। इसको 19वीं सदी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम और बेगलर ने रेनोवेट किया, रिस्टोर किया, और जब रिस्टोरेशन हो रहा था तो कनिंघम को असली वज्र आसन मिल गया। कनिंगम लिखते हैं, द फर्स्ट एंड परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी वॉज द रिमेन्स ऑफ द ओरिजिनल टेम्पल ऑफ अशोका विद द पॉलिश्ड वज्र आसन थ्रोन एग्जैक्टली एज पोर्ट्रेड इन द बारहुट बास रिलीफ विद द व्यू ऑफ द बोधि ट्री ऑफ साक्य मुनि। और वो कहते हैं आगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी वॉज द फैक्ट दैट द प्रेजेंट टेम्पल इज बिल्ट एग्जैक्टली ओवर द रिमेन्स ऑफ अशोकास टेम्पल सो दैट द ओरिजिनल वज्रासन थ्रोन स्टिल रिटेन्स इज ओल्ड पोजिशन ऑफ बुद्धा सीट एंड द रेप्यूटेड सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो अशोका ने मंदिर बनाया था उसी जगह पे एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर गुप्ता साम्राज्य के दौरान फिर से मंदिर बना, और वो वज्र आसन जो कहते हैं कि यूनिवर्स का सेंटर है वहीं पर है। और आज भी जब आप जाते हैं तो आपको जो मंदिर है उसके बिल्कुल ठीक पीछे दीवार से लगा हुआ वज्र आसन दिखाई देता है, उसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रेलिंग्स हैं तो आप उसको दूर से ही देख सकते हैं। ये मंदिर बहुत खूबसूरत है और इसके चारों तरफ आज जो रेलिंग लगी हुई है बहुत ही खूबसूरत, उसके ऊपर कार्विंग और नक्काशी बनी हुई है। ये बाद में बनाई गई थी, जो ओरिजिनल रेलिंग सुंगा पीरियड में बनी थी वो वहीं के पास एक म्यूजियम है ASI का, उसमें रखी हुई है, वो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखेंगे उस ज़माने के। मंदिर जो है वो 11 मीटर की ऊंचाई है उसकी, और क्लासिकल स्टाइल जो होता है हिंदुस्तानी टेम्पल आर्किटेक्चर का उस तरह से बनाया गया है। इसमें चारों तरफ ताख बनी हुई है जिसमें लॉर्ड बुद्धा की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, और उसके ऊपर चैत्य ताखें हैं, एक शिखर है और उस शिखर के ऊपर अमलक है। चारों कोनों के ऊपर लॉर्ड बुद्धा के श्राइन चेम्बर्स हैं और हर श्राइन चेम्बर के ऊपर एक छोटा सा शिखर है। ये मंदिर जो है वो ईस्ट फेसिंग है और इसमें एक सामने छोटा सा आंगन है और उसके पीछे मंदिर, और जब आप अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको दिखाई देता है वो एक बहुत ही खूबसूरत सैंक्टम है जिसमें लॉर्ड बुद्धा की एक 5 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है जो विराजमान है एक तख्त के ऊपर, और बहुत ही सुंदर है। वहाँ खड़ों के लोग ध्यान करते हैं, मैंने भी वहाँ खड़ों के ध्यान किया। उसके बाद खैर फिर आप पीछे जाते हैं तो पीछे की तरफ जो है वो बोधि वृक्ष है, बहुत ही खूबसूरत है, ज़रूर जाइएगा अगर आपको वहाँ पे मौका लगे तो, और वहाँ बैठ के ध्यान कीजिएगा उस पेड़ के नीचे ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में, और हो सकता है हमें भी कुछ अपने बारे में सच्चाई जानने को मिले। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा @HTSmartcast पर ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए। अगर आपको इस पॉडकास्ट पर इतिहास से जुड़ी कोई और कहानी सुननी हो तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं ट्विटर के जरिए @IAMRANA, इंस्टाग्राम पे @RANASAFI। और ऐसे और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल।
A different future starts with you. That's why GoDaddy does more than help you find a name. You can create, sell, and get found online, so any small business could be a driving force to create change or build an empire. We know old ideas aren't cutting it anymore, so we're calling for a new generation of thinking, your way of thinking. So whatever you have in mind that will help make a different future, find everything you need to get started at GoDaddy.com. Because the future isn't decided yet. It's up to us to make it happen. Start different at GoDaddy.com.